ओम शांति। आज मार्गदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे बीच उपस्थित हैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न विषयों के निपुण अभियंता हमारे बीच हैं और अभियंताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में परमादरणीय रानी दीदी हमारे बीच हैं। और रानी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपसे संवाद करने के लिए। ये अभियंता गण हैं, ये अपने क्षेत्र में निरंतर साधना रत रहकर अपनी प्रतिभा को विकसित करने वाले, निपुणता हासिल करने वाले ऐसे लोग हैं। समाज में, देश में अब संस्कृति के वातावरण से भी, निजी जीवन में भी बहुत सारी नकारात्मक भावनाओं के भी शिकार इन्हें होने की गुंजाइश बन जाती है। ऐसे में इनकी ढेरों समस्याएं। सबसे पहले इस संदर्भ में पहले आपका आलोक, आपका मार्गदर्शन, फिर इनकी समस्याओं का समाधान।
आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप सभी इंजीनियर्स यहाँ आए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई स्थान बनाना होता है तो पहले उसका नक्शा आपके मन में तैयार हो जाता है, फिर आप उसको कागज पर तैयार करते हैं, तब वो प्रैक्टिकल रूप लेता है। निर्माण का कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। कितना सुख सुविधाएं उसके अंदर जुटा सकते हैं, कितना अपने अनुकूल स्थान बना सकते हैं, ये अनेक तरह की बातों को देखते हुए, सोचते हुए, जिस प्रकार से एक भवन का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा भी कहते हैं ये वर्तमान युग है, इस समय चरित्र निर्माण की जरूरत है। हम आपसे कहेंगे कि चरित्र निर्माण का भी एक नक्शा तैयार करें। आज किसी ने भी ये नहीं दिखाया कि अगर आप अपना चरित्र ऊंचा करना चाहते हो, उसका निर्माण करना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा। वास्तव में ये शरीर हमारा एक इंजन है, आत्मा इंजीनियर है, इसको चला रही है, इस मशीन को चला रही है। किस दिशा की ओर ले जाए, क्या सोचे, क्या देखे, क्या बोले, ये ज्ञान ना होने के कारण उत्तमो गुण का रास्ता पकड़ लेती है, कुसंग का रास्ता पकड़ लेती है। कुसंग की ओर चले जाने से जीवन नष्ट हो जाता है, जैसा संग वैसा रंग लग जाता है, मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान को भी आना पड़ता है सही मार्ग दिखाने के लिए। कौन सा मार्ग आपके लिए उचित है ये बताने के लिए ईश्वर को भी आना पड़ता है। परमात्मा क्या करते हैं, विश्व का नव निर्माण। नव निर्माण का मतलब है पुराना था। लोग समझते हैं भगवान ने निर्माण तब किया जब सृष्टि थी ही नहीं, और भगवान को संकल्प हुआ सृष्टि रचूं, और उसने निर्माण का कार्य शुरू किया। हम कहते हैं भगवान ने किया विश्व नव निर्माण। सृष्टि नहीं थी ऐसी बात नहीं है, सृष्टि तो पंच तत्वों से बनी है। कोई समय ऐसा होगा आकाश नहीं होगा, शून्य ही तो आकाश है। वायु नहीं होगी, अग्नि नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा, जल नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगी, एक बूंद भी जल की नष्ट नहीं हो सकती। ये भी अनादि है, ये भी अविनाशी है। परमात्मा को इसे रचना नहीं पड़ता, परमात्मा को मनुष्य के संस्कारों में नयापन लाना पड़ता है, उसके लिए ज्ञान देना पड़ता है। इसीलिए हम सब जानते हैं, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई। कैसे रची ब्रह्मा ने सृष्टि, कहते हैं उसके मुख से उत्पत्ति हुई। मुख से उत्पत्ति का अर्थ क्या है, मुख से गाइड किया, मुख से पहचान कराई, मुख से ज्ञान दिया, अंदर आत्मा की ज्योति जगाई, ये है मुख द्वारा नव जीवन प्रदान करना। ऐसे ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, उनका दूसरा जन्म होता है। शारीरिक जन्म के तो माता पिता हैं, एक आध्यात्मिक जन्म। वो ब्रह्मा द्वारा पहचान कराने से हुआ, इसे नव निर्माण का कार्य कहते हैं। तो ये समय है नव निर्माण का, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग इंजीनियर्स का ही हो सकता है।
निर्माण से जुड़े होते हैं इंजीनियर, और इंजीनियर की महती भूमिका हम लोग दिन रात देखते रहते हैं, और इनकी कार्य कुशलता का लाभ भी लेते रहते हैं। इंजीनियरों के बीच हम जाते हैं और पूछना चाहते हैं उनसे उनकी समस्या।
मैं सुरेश प्रसाद प्रभाकर, मैं सिर्फ दीदी से ये जानना चाहूंगा, क्या ईश्वर हैं? यदि हैं तो किसी ने उनको देखा है?
जब सृष्टि है तो क्रिएटर भी है, सबसे पहली पहचान तो ये है। सृष्टि है तो इसका रचता भी है, इसका क्रिएटर भी है, उसी को ईश्वर कहते हैं। और वो ईश्वर एक है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो मानव जैसा रूप धारण नहीं करते, वो साक्षी दृष्टा होकर इस संसार को देखते हैं और एक नियम बना दिया है, जो करेगा वो पाएगा। ईश्वर ने सबको स्वतंत्रता प्रदान की है, जो चाहो कर्म करो लेकिन फल भोगना पड़ेगा, वहां मनुष्य बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए सबसे पहली बात ये मानकर चलना है, क्रिएटर है, वो रचता है, वो ईश्वर है, उन्हें परमात्मा कहा गया है, और वो एक है। देवी देवता देवी देवता है, उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने कर्म किया, कर्म का फल पाया, लेकिन एक ईश्वर है जो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। और वही जब नव निर्माण की जरूरत होती है तब सृष्टि पे अवतरित होते हैं और नव निर्माण कराते हैं और पुराने का विनाश कराते हैं। नया मकान बनेगा तब तो पुराने को गिराया जाएगा। तो ये धर्म स्थापना और अधर्म विनाश, ये दो कार्य ईश्वर के हैं। और करने का समय अधर्म का समय, तो आज कलयुग का समय चल रहा है, हर अवगुण अति में जा रहा है, ये धर्म गिलानी का समय है। इस समय परमात्मा का सत्य धर्म अर्थात श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में अपनाने की विधि सिखाते हैं। ये सत्य धर्म की स्थापना, वो ये कर्तव्य का समय अभी है।
दीदी ने साफ साफ कहा कि अगर रचना हमारे सामने है तो उसका रचयिता भी तय है कि निश्चित रूप से होगा ही। और बड़ा ही अच्छा प्रश्न, हम फिर लौटते हैं आपके बीच और जानना चाहते हैं आपसे आपका प्रश्न।
मेरा नाम इंजीनियर राम स्वासा। जब भी इंजीनियर कोई बन के आता है, मेरे दृष्टिकोण से उसका लाइफ तनावग्रस्त धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। अगर इंजीनियर पास करके आता है, नौकरी नहीं मिली, तनावग्रस्त हो जाता है, ढंग का वर्क नहीं किया तो तरह से हायर पदाधिकारी उनसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके चलते तनाव होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अभियंता भाई बंधु तनाव से कैसे मुक्त हो, इस पर आप मार्गदर्शन करने की कृपा करें।
इस संसार में आप किसी भी क्षेत्र में खड़े हो जाइए, समस्या तो आनी ही है। परिवार में हो, आप अपने ऑफिस में हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, समस्याएं तो आएंगी। अब हमें अपने अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा करना है जिस दृष्टिकोण के द्वारा हमारे को समाधान नजर आए। हमारे मन में समस्या 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 के बदले समाधान 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 दिखाई दे और हम समाधान करें। श्रेष्ठ चिंतन, अगर हमारा शुभ चिंतन है, अगर हमारा श्रेष्ठ चिंतन है, समस्या का रूप बदल जाता है। किसी को बीमारी हो गई, मान लीजिए दुखी होता है, एक व्यक्ति दुखी होता है। हमने एक ऐसी बहन को देखा जिन्हें कैंसर हो गया, हम उनसे मिलने गए, सोचा बहुत इनको तनाव होगा, इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा ऑपरेशन। वो बहुत प्रसन्नचित थी, बोला दीदी लोग आकर हमारे को टेंशन की बातें करते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। कैसे नहीं है? कहा कि मैं समझती हूँ कोई मेरे कर्मों का हिसाब था, इतना खर्च करना था, हिसाब को कर्जा चुक गया, कष्ट पाना था वो कर्जा चुक गया, मैं तो लाइट हो गई। मैंने देखो पिछला खाता चुका दिया दृष्टिकोण। तो हम समझते हैं अगर हमारा दृष्टिकोण ऊंचा हो, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो, तो हर समस्या का रूप बदल जाएगा, हर समस्या का रूप श्रेष्ठ रूप, गुण ग्रहण करने वाला रूप बन सकता है, ऐसा हम समझते हैं।
श्रेष्ठ चिंतन अगर हम करते रहें तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का निदान हमें स्वतः ही दिखता रहेगा।
मेरी समस्या ये है कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, मुझे भारत से बहुत प्यार है। मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि मुझे स्वस्थ भारत चाहिए, शिक्षित भारत चाहिए और सुंदर भारत चाहिए, अगर ये कहीं से कोई खलल इसमें नजर आता है तो मुझे बड़ी क्षोभ होती है। मैं उस क्षोभ से अपने आप को कैसे उबारूं?
आपकी कल्पना बहुत ऊंची है, आपका विचार बहुत ऊंचा है, आप भारत को एक संपूर्ण रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन जितने कार्यकर्ता हैं सबका संस्कार अलग अलग, कोई किसी लक्ष्य से कार्य कर रहा है, कोई किसी लक्ष्य से कार्य कर रहा है, और वो सब भिन्न भिन्न तरह से कार्य को देखकर, अगर आप ये समझ लें कि हमारे सामने एक स्टेज पर एक ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा में हर एक्टर को अलग अलग रोल मिला हुआ है, कोई बहुत सत्यता से रोल कर रहा है, कोई झूठ का रोल कर रहा है, इस प्रकार से विभिन्न पार्ट चल रहे हैं। आप उन्हें साक्षी दृष्टा होकर अगर देखेंगे तो आप स्वयं तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन आप जितना अच्छा रोल करने के लिए इस मंच पर आए हैं उसे आप संपूर्ण जरूर करें। दूसरा, आपकी दृष्टि से बिल्कुल सही उतरे या ना उतरे ये हो सकता है, उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना उनको विचार बता सकते हैं। अगर आप सोचते हैं इनको ऐसा करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, और वो नहीं करते तो आप डिस्टर्ब होंगे। सबसे पहले चाहिए अपने आप को ठीक रखना, अपने आप को संतुष्ट रखना, और औरों के प्रति शुभ भाव को जगाना। एक परिवार में चार बच्चे हैं, चारों के विचार अलग अलग हैं। एक ईसा मसीह को मानता है, एक हनुमान जी को मानता है, एक मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है, एक किसी और पंथ को स्वीकार कर लेता है, फिर भी तो आपस में प्रेम रहता है कि हम चारों भाई हैं। सबके काम करने का तरीका अलग, सबकी पसंद अलग, सबके सोच अलग होता है, ऐसा ही सोचकर हमको चलना है। ये वैरायटी अनेक अनेक विचारधाराओं का, अनेक अनेक रस्म रिवाज का एक नाटक इस मंच पर है, जहाँ वैरायटी है वही तो आकर्षक है। वो वैरायटी का कारण झगड़ा नहीं, वो वैरायटी के कारण ये स्टेज सुंदर लग रही है, ये विभिन्नता इसकी सुंदरता है। अगर इस दृष्टिकोण से देखें और अपनी स्थिति को एक जैसा बनाएं, सदा प्रसन्न चित, सदा संतुष्ट रखें, तो आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर संतुष्ट रहेगा।
बड़ा ही अच्छा ये प्रश्नोत्तर का सत्र और मार्गदर्शन में परमादरणीय रानी दीदी अभियंताओं की समस्याओं का समाधान जिस तरह से कर रही हैं, ज्ञान बोध सकारात्मक चिंतन हमारी मनोदशा पर काबू करने के लिए पर्याप्त है।
मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं MIT इंजीनियरिंग करने के बाद अभी तत्काल इरकॉन जो पुल बना रही है उसमें एज ए कंसल्टेंट टीम लीडर वर्क कर रहा हूँ। मुझे विशेष इस विषय में कहना है कि सामाजिक जो स्थिति है इसके अनुसार हमें जो जवाबदेही मिली है, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस बीज के बनाने में, हम चाह के भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ इस तरह की वातावरण ही प्रभावित है, और इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हम दीदी से अपना इसे आग्रह करेंगे, जरा सुझाव दें।
एक कार्य तो आप ये कर सकते हैं, जितने आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा कार्य की समय पर पूरा करने की जिम्मेवारी है, उन सब की मीटिंग तो कभी आप करते होंगे, मिस्त्री हैं, लेबर हैं, भिन्न भिन्न, उन सब को इकट्ठा करके एक बार उन्हें उत्साहित जरूर करें, क्योंकि आपकी इच्छा अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, रात भी कर रहे हैं, दिन भी कर रहे हैं। उन्हें एक ऐसा प्रशंसा जरूर उन्हें मिलनी चाहिए कि आप हमारे कहने के अनुसार एक्यूरेट काम कर रहे हैं, आपने इस कार्य को बखूबी किया है, अच्छी तरह से किया है। होता क्या है, मेहनत करने वाला सुबह से रात तक मेहनत करता है, लेकिन उसको शिकायत ही मिलती है, शाबाशी नहीं मिलती। पहला काम है अपने साथ काम करने वालों को खुशी देना, प्यार देना, संतुष्टि देना, चाहे वो लेबर ही क्यों नहीं है, आखिर तो मनुष्य है। हमारे वाणी से, हमारे मन के भावों से उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाए, उनके अंदर उत्साह बढ़ जाए, उन्हें उसका इनाम वस्तु के रूप में तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे शब्दों के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे प्रेम हम उन्हें देते हैं, ऐसा संतुष्टता के बोल हम बोलते हैं, तो ये बहुत अधिक कारगर होंगे।
हम जहाँ जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वहाँ हमारे जो भी सहयोगी हैं, हमारे अधीन रहकर कार्य करने वाले जो भी मजदूर कारीगर हैं, उनका भी मनोबल हमें हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि उनका श्रम और उनकी कुशलता से ही और साथ ही साथ हमारी दिशा और दृष्टि से ही एक सम्यक निर्माण संभव होता है।
मैं दीदी से ये जानना चाहूंगा, जिसे ये सभी आम अभियंताओं के साथ ये समस्या है, जब वो परियोजना से वापिस आते हैं तो अपने मन को उस परियोजना में ही लगाए रखते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मेंटेन करते हुए उनको काम कराने होते हैं। कई बार होता है क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो क्वांटिटी अचीव नहीं हो पाती, क्वांटिटी अचीव करते हैं तो क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाती, और इसमें उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं। तो मैं दीदी से चाहूंगा कि ये ऐसा मार्गदर्शन दें कि सभी अभियंताओं के साथ ये समस्या दूर हो जाए,
कार्य करना और उससे मुक्त हो जाना। जैसे कछुआ कार्य करता है फिर जो अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से जो योगी होता है, जिसके मन का योग परमात्मा से लगा हुआ है, जो उनसे पावर ले रहा है, वो कार्य करते करते बीच में उनके पास पहुंच जाता है। क्योंकि मनुष्य की कार्य क्षमता एक लिमिट है, उसको पूरा करने के लिए कुछ सुप्रीम पावर का सहयोग चाहिए। अपने कर्म को करते करते बीच में अपने संकल्पों को ब्रेक दे दें तो इसका लाभ मिल सकता है। हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। दिन में 5-6 बार एक टाइम निश्चित है, जिस समय एक गीत बजता है, म्यूजिक बजता है, और हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, और छोड़कर 3 मिनट अपनी आत्म अनुभूति और परमात्मा के पास बैठ जाते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अर्पण कर देते हैं। जैसे आप कितने ही व्यस्त हो, जब ट्रैफिक में लाल बत्ती जल जाती है तो गाड़ी रुक जाती है, 3 मिनट 5 मिनट रुक ही जाती है। इस तरह से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें अपने संकल्पों को, विचारों को रोकने का, कंट्रोल करने की एक प्रैक्टिस कर लेनी है। जो कार्य जिस समय करना है उस समय पर करें। जिम्मेवारी तो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी होते हुए भी लाइट रहें, इसलिए बोझ को लेकर ना चलें, बोझ महसूस भी ना करें, अनुभव करें करावनहार करा रहा है।
नई योजना के लिए हमें निरंतर हो रही पुरानी योजनाओं से कभी कभार मुक्त होने की जरूरत है, और नई ऊर्जा हमारे भीतर संग्रहित हो, इसलिए कभी कभी निरंतर विचार में भी अवरुद्धता निश्चित रूप से ला देनी चाहिए, तभी हम फिर आगे का काम कर सकते हैं।
मैं दिलेश्वर प्रसाद, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये पूरे संसार अभी आपदा प्रबंधन से झेल रहा है, सबों ने फोरकास्ट किया है कि 48 डिस्ट्रिक्ट विनाश के चपेट में आने वाला है, भूकंप के चपेट में आना है, तो इसके लिए दीदी जी का क्या संदेश है इस विपत्ति से इस आपदाओं से कैसे बचा जाए।
हम सभी जानते हैं ये कलयुग के अंत का समय है, विकास करते करते विनाश की ओर बढ़ गए, है ना? ऐसा एक तरह विकास के कार्य में लगे थे, कितने लोग विनाशकारी चीजें जो बना रहे हैं, क्या वो नहीं जानते इसे नरसंहार हो जाएगा, इसे संसार का नाश हो जाएगा? जानते हैं फिर भी बना रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? भावी, आगे क्या होने वाला है? ये सारा संसार बारूद की ढेरी बन गई है, हम इस बारूद की ढेरी पर बैठे हैं, एक चिंगारी लगने की देर है और ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जो दुनिया आने वाली है, कलयुग के बाद जो सत्युग आने वाला है, उसके निर्माण में हम कुछ कार्य करें, हम अपने चरित्र निर्माण का कार्य करें, हम अपने संस्कारों के नव निर्माण का कार्य करें। अगर हमारे हर कर्म पुण्य कर्म हो, हमारे हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो, हमारे हर कर्म महान कर्म हो, तो हम अपने कर्मों की प्रालब्ध हर व्यक्ति पाता है। नाश होने वाला समय आएगा, नाश होगा, उसकी हम चिंता ना करें, ना उसका चिंतन करें। जो होना है होगा, लेकिन हमको जो अभी करना है, हमारा मन वर्तमान में उस अपनी जिम्मेवारी को निभाए। अभी मुझे हर कर्म पुण्य कर्म करना है, हर कर्म श्रेष्ठ कर्म करना है।
दीदी, हमारे बीच और भी अभियंता हैं और ये अभियंता सामाजिक प्राणी भी है और निरंतर निर्माण कार्य से जुड़े रहने वाले लोग हैं, और ऐसा निर्माण करके समाज और राष्ट्र को समर्पित करने वाले लोग हैं जिसका व्यापक लाभ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उठाती रहती हैं।
मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मेरा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का फर्म है, पिछले 42 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने वर्क से सेटिस्फाइड हूं, प्रोफेशन से सेटिस्फाइड हूं और अपने अचीवमेंट से सेटिस्फाइड हूं, लाइफ से सेटिस्फाइड हूं, लेकिन मैं देखता हूं और मैंने गलत काम आज तक जिंदगी में नहीं किया है, लेकिन मैं देखता हूं कि जो लोग गलत काम करते हैं उनका फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी आदमी क्यों नहीं सोचे कि हमको गलत काम करना चाहिए?
हमारा दृष्टिकोण उसके लिए ये है कि अगर आपको लगता हो कि व्यक्ति गलत काम करता है, घूस लेता है, कुछ और गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो उसकी सफलता में उसके और गुण काम कर जाते हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा एक्टिव होकर काम करता है, कोई ज्यादा लोगों के काम आता है, ज्यादा उसके पंचुअल है, विश्वास जीत लेता है। कहने का भाव ये है, एक काम वो है जो आप भी जानते हैं ये गलत हो रहा है, लेकिन दूसरे उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसकी सफलता में सहयोगी हो जाती हैं और वो सफल हो जाता है। मैं एक बात आपसे कह रही हूं, एक व्यक्ति ईमानदार है लेकिन अपने काम करने में चुस्त नहीं, एक्टिव नहीं है, वो टाइम पे काम पूरा नहीं कर पाता, किसी का विश्वास नहीं जीत सकता, हार्ड वर्क नहीं कर सकता, और एक कार्य की सफलता के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वो उसमें नहीं है, और एक बेईमान व्यक्ति, बेईमानी तो दुर्गुण है लेकिन बाकी सारे गुण उसमें हैं, बहुत दूरादेशी है, बहुत चुस्त है, अलर्ट है, अपने काम बहुत एक्टिव होके करता है, सबका विश्वास जीत लेता है। हमें ऐसा लगता है अपने अन्य गुणों के कारण वो सक्सेस होता है, बेईमानी के कारण नहीं। और एक ईमानदार व्यक्ति अगर कष्ट पाता है तो ईमानदारी के कारण नहीं, अपने और दुर्गुणों के कारण कष्ट पाता है। अगर ईमानदार भी हो और बाकी सब क्वालिटी भी हो जो सफलता के लिए जरूरी है, तो हम नहीं समझते कि वो कभी आगे बढ़ता हुआ ना दिखाई दे, ऐसा हमारा विश्वास है।
मैम, अब आज के समय में सभी आदमी अपने ही विषय में सोच रहे हैं, और आज इतना पॉल्यूशन और इतना प्रकृति गंदा है, तो मैं दीदी से कर रहा हूँ प्रश्न कि इस प्रकृति को कैसे पावनी बनाया जाए।
हमारी सोच का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है, मनुष्यों पर भी पड़ता है, हमारे चारों ओर वातावरण पर भी पड़ता है। इसलिए अपनी सोच में जो सामाजिकता है उसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिकता भी आ जाए। अगर हमारी स्व स्थिति अच्छी है तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएंगी, ये निश्चित है। आज मनुष्य परिस्थितियों के हाथ का खिलौना बन गया है। वो हंसाती है हंसते हैं, रुलाती है रोते हैं, डिस्टर्ब करती है डिस्टर्ब होते हैं, जैसे वो चलाती हैं ऐसे कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति, हमारे मन की स्टेज परिस्थितियों पर प्रभाव डाले, अशांत मन पर हमारा प्रभाव पड़े, असंतुष्ट मन पर हमारा प्रभाव पड़े और वो संतुष्ट हो जाए, ऐसी हमारी अपनी मनस्थिति चाहिए।
समाज का कितना कल्याण हो, राष्ट्र का कितना कल्याण हो और फसलों की हरियाली किस तरह से बनी रहे, प्राणी मात्र का कल्याण हो, तो हमारे भाव के साथ आध्यात्मिकता का समावेश निश्चित रूप से होना चाहिए। और जैसे ही हमारे सद्भाव में आध्यात्मिकता की खुशबू प्रविष्ट कर जाती है, हमारा सद्भाव जन कल्याणकारी हो जाता है। परमादरणीय रानी दीदी ने जिस तरह से अभियंताओं के प्रश्नों का, उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया, इसके लिए दीदी आपका बहुत बहुत आभार। और आप सब आकर दीदी से सीधे सीधे संवाद करते हुए अपने हृदय को और अपने अंतर्मन को खोल कर रख दिया, अपनी गुत्थियों को सुलझाने के लिए। आपकी गुत्थियां सर्वजनीन गुत्थी हैं, आपका प्रश्न सर्वकालिक प्रश्न है और इसे आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न कोई शिखर व्यक्तित्व ही एक सही रास्ता देने में सक्षम समर्थ है। आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति।